आज के इस सत्र में हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी बिंदु दीदी हमें सत्र को स्पष्ट करेंगे। और ये सिर्फ ज्ञान की समझ लेने के लिए सत्र नहीं है, हमारे बीच में एक ऐसी तपस्वी आत्मा है जिसके आध्यात्मिक प्रकंपनों से उनको महसूस करके अपने अंदर समाने का ये एक सत्र है, जिन्होंने अनेक हजारों आत्माओं के जीवन को परिवर्तित किया है। पिछले 5 दशकों से, हाफ सेंचुरी से, सिरसा और उसके आसपास अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। बाल्यकाल से ही ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं और गत वर्ष वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर गणेश जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उड़ीसा से दीदी को गौरव ऑफ सिरसा का अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हमारा सौभाग्य ऐसे परम आदरणीय दीदी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आप सभी दीदी से इस सत्र को आप समझेंगे। ओम शांति। अच्छा, बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि दीदी का स्वागत के लिए तुलसी पौधा और बैज लेकर आए। ये तुलसी का पवित्र पौधा शुभकामनाओं और पवित्रता का प्रतीक है। आप सब करतल ध्वनि के साथ दीदी का स्वागत करेंगे।
ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं भगवान के इस बेहद के घर में, पवित्र भूमि और बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस के बीच आप सब निवास करते हुए इसको स्पिरिचुअल लेवल पर एंजॉय कर रहे हो। तो आज के सत्र की शुरुआत हम एक एक्टिविटी से कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, आप अपनी अपनी डायरी खोल करके उसमें ऐसा सर्कल बनाओ जो सामने आप देख रहे हो, और उसमें नंबर 1 पर आप फैमिली के किस सदस्य को, मित्र, दोस्त, फैमिली, जो भी आप जिसको भी नंबर 1 पे रखते हो, उस रिश्ते को और नंबर 1 प्यार करते हो, तो उसका नाम लिखना है। सभी ने खोली डायरी अपनी? नहीं है तो मन रूपी डायरी में नोट कर लीजिए। वैसे तो आप सबको पैड पेन दिया गया है ये सब काम करने के लिए, शायद फाइलें सभी लेकर के नहीं आते हैं ना, पैड पेन वगैरह, तो अपने मन में नोट कर लीजिए। फिर ये सेकंड सर्कल में सेकंड और थर्ड नंबर पर आप किसको रखते हैं, होती है ना प्रायोरिटी कि मेरे लिए सबसे पहले ये व्यक्ति मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, तो ये आप करेंगे 4, 5, 6 नंबर पर, इतना आपको करना है। आप किसको रख रहे हैं, ये सभी 2 मिनट के लिए ये काम कीजिए। आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 व्यक्तियों के नाम लिखिए। 6 ना हो 4, 5 लिख सकते हैं, कई बार होता है ना 6 नंबर लिखने थोड़े मुश्किल होते हैं ढूंढना आगे आगे, तो 4, 5 जितने भी लिखे आप। अच्छा, जिसका काम हो गया वो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई 2-4 बताएंगे? हाँ आप बताइए, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको रखा है, प्लीज बोलो, दोनों में से कोई भी बोलिए। हाँ। पहला माँ, मदर, बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए। हाँ जी, सेकंड पिताजी, थर्ड बेटी, ठीक है, फोर्थ वाइफ, वाइफ फोर्थ पे चली गई, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। कोई और इसके अलग किसी का सीरियल हो? हाँ, बहनों में से बताओ कोई। सेकंड पे पति हस्बैंड थर्ड पे मम्मी ठीक है फोर्थ पे पापा और फिफ्थ पे बेटी सिक्स पे बेटा अच्छा और पीछे वाले कुछ बोलिए और कोई बोलना चाहेगा हाँ बोलो 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 फर्स्ट पे माँ सेकंड पे डॉटर ठीक है ठीक है ठीक है और माता जी बताएंगे कृष्णा माता जी आप बोलो बैठे बैठे ही बोल दो कोई बात नहीं पहले नंबर पे गुरुदेव बेटा ठीक है तीसरे नंबर पे पोता पोती बहुत बढ़िया चलो बहू रानी भी आ गई ये और अच्छी बात है बहू रानी का भी नंबर है इनके में बहुत बढ़िया सबने अपनी अपनी भावनाओं से बताया अब मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट आ गया आप सबसे पहले किसको पुकारेंगे किसको पुकारेंगे ईश्वर को अब सबसे प्यारे में तो ईश्वर नहीं लिखा जरूरत में ईश्वर को पुकारेंगे पहले नंबर में प्यार में कोई और ये तो मेरा फेरी हो गई ना हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट में ईश्वर तो आया ही नहीं था और पुकारेंगे सबसे पहले उसको आज का हमारा जो विषय है इसीलिए पहले एक्टिविटी से स्टार्ट किया हमने इसको आज का हमारा विषय है अवेयरनेस ऑफ द यूनिवर्सल ट्रुथ उस परम पिता परमात्मा की अवेयरनेस परिचय अच्छा आप में से कौन कौन है जो भगवान को प्यार करते हैं सारे 100% प्यार करते हैं अच्छा वो हाथ उठाओ जो ईश्वर को मानते हैं उसमें भी 100% है सब ईश्वर को मानते हैं अच्छा वो हाथ उठाओ जो ईश्वर को जानते हैं अभी सिर्फ 10-20 हाथ खड़े हैं अब आप मानते भी आप प्यार भी करते हैं जानते हैं नहीं बिना जाने किसी को प्यार हो सकता है तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी प्यार भी करते हैं मानते भी हैं पर जानते हैं नहीं अब जब तक आपने यहाँ आए नहीं देखा नहीं तो ये स्थान आपको खींचेगा नहीं अब आप वापस जाएंगे तो आप कहेंगे वहां की याद आती है क्योंकि आपने देख लिया जान लिया पहचान लिया मिल लिए अब प्रश्न आता है कि उसको जानना बहुत जरूरी है देखो आज का एक नए जमाने में प्लस माइनस होते हैं आप अपने बच्चों के लिए कोई रिश्ता ढूंढो ना तो आजकल के मेजोरिटी बच्चे 90% क्या कहते हैं हम अपनी चॉइस का लेंगे जिनको हम पहले से जानते हैं हम उनके संस्कारों को जानते हैं हमें उनकी हैबिट्स अच्छी लगती है हमें उनकी नेचर अच्छी लगती है हमारे आपस में विचार मिलते हैं और पेरेंट्स भी इस बात को समझने लग गए हैं जो पढ़े लिखे हैं कि अनजान कोई व्यक्ति ढूंढेंगे, आपस में विचार ना मिले, दिक्कत है, चलो इन बच्चों के विचार मिलते हैं, इनका आपस में कर देते हैं, ना ये रिवाज। अभी भले कुछ धोखा भी हो जाता है, पर कुछ जो समझदार बच्चे हैं वहां सिलेक्शन अच्छी भी हो जाती है। वो तो एक इंसान की सिलेक्शन, इंसान के साथ की बात है। ठीक इसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ना, उसका अनुभव करना। अगर आप, मैं अभी आपसे पूछूं किस किस का ध्यान लगता है, किस किस ने भगवान को देख लिया है, हाथ उठाना जरा, फिर और प्रश्न भी पूछेंगे। उठाओ हाथ, जो उठाएंगे उनसे, वो डर के मारे नीचे कर लिया कोई, जो दो चार ने उठाया था कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछेंगे। देखो ये है आंतरिक अनुभव की कमी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज हमें वो अनुभव, मेजोरिटी की कंप्लेंट है, हमारे पास आके कहते हैं बहुत सारे लोग, बस हमें ना मेडिटेशन की बड़ी इच्छा है, बस हमें ध्यान लगाना सिखा दो। वो क्यों नहीं लग रहा हमारा, जो आपने सच्चाई बयां की आज, जानते नहीं है। सुना हुआ है भगवान है, अदृश्य रूप में अनुभव भी होता है कि वह अदृश्य शक्ति हमें मदद भी करती है, पर वो है कौन वो हमें मालूम नहीं है। ये हम एक वीडियो के द्वारा भी देखते हैं आप लोगों की मनोस्थिति। लविश भाई वो वीडियो चल रही है, तो एक वीडियो आप देखिए, 4 मिनट की एक वीडियो है। ये आप सबके मन के भाव हैं उसके अंदर, जो भी आपने हाथ खड़ा करके व्यक्त किए हैं।
कहाँ रे तू खुदा, है कहाँ रे तू, क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू।
ये हम सब की कहीं ना कहीं मनोदशा है, हम उसको प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। कोई हमें कह दे इस विधि से मिल जाएगा, हम कोई शारीरिक कष्ट देने को भी तैयार हो जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, जो इस वीडियो में हम सबने देखा। और भिन्न भिन्न विधियां तो हम अपनाते ही हैं, कोई पैदल जाता है, कोई ऐसे लेट के जाता है, कोई दंडवत प्रणाम करता जाता है, कोई वृक्ष की पूजा कर रहा है, बहुत विधियों से जो भी उनको बताया जाता है तो सब विधियां अपनाते हैं। और लास्ट में यही रहता है कि मालूम नहीं तू कहाँ है, तू कौन है। कई रूप हैं जिस कारण उलझ भी जाते हैं, क्योंकि ये भी हम सब मानते हैं ना, गॉड इज वन. कौन कौन मानते हैं गॉड इज वन? सभी मानते हैं, मेजोरिटी 99% ने हाथ उठाया. गॉड इज वन. गॉड इज लाइट. कौन कौन मानते हैं गॉड इज लाइट? अच्छा, ये भी सभी मानते हैं. गॉड इज ट्रूथ. ये भी सभी मानते हैं. ईश्वर सत्य है. अब सत्य की परिभाषा भी संसार में बहुत बदल गई है. राजनीति में सत्य है कौन? जिसको वोटें ज्यादा डल गई वो सत्य हो गया, वो जीत गया. कोर्ट में विटनेस इज ट्रू. जिसने गवाहियां कर दी चाहे वो झूठी ही हो तो वो सत्य साबित हो गया. अलग अलग डिपार्टमेंट में ही अलग अलग सत्य की परिभाषा हो गई है ये आज के जमाने की. लेकिन वास्तव में सत्य अविनाशी होता है, इम्पेरिशिबल. सत्य शाश्वत होता है. सत्य शक्तिशाली भी होता है, सत्य निडर भी होता है, सत्य अचला डोल भी होता है, सत्य एक रस भी होता है. यहां सामने आप सब देख रहे हैं सुप्रीम. ये सारी उसकी महिमा है. आनंद के सागर, शांति के सागर, दया के सागर, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त, जो हम हमेशा से सुनते आते हैं ईश्वर के बारे में. और दूसरा है ईश्वर का रहने का स्थान, ये तीन लोक दिखाए हैं जिसकी हम बात करेंगे. और तीसरा है रोल ऑफ सुप्रीम, जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, दैट इज जीओडी गॉड. जैसे कल आप सबने लेसन लिया ना सोल का, सोल के भी स्पेलिंग क्या है, SOUL, सोल, जिसकी फुल फॉर्म है सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव. सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव विश्व बंधु तब की भावना पैदा करता है आत्मा का ज्ञान. क्योंकि आत्मा के नाते से हम सब एक ईश्वर के बच्चे. आपस में क्या रिश्ता हो गया हमारा, भाई बहन का. अपनेपन का जो दायरा है आत्मा का ज्ञान मिलते ही वो बहुत बड़ा हो जाता है. गायन भी आता है ना, अबल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे. उसी नूर की उपज को भी गॉड इज वन को संसार स्वीकार करता है. अब उलझ हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ करते हैं तो हम अपनी भावनाओं से सबको ही भगवान मान लेते हैं. भगवान जैसा तो कह सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कह सकते. कोई बहुत गुणवान होता है ना, जैसे एक बच्चे को भी कह देते हैं ये तो भगवान का रूप है, इसमें तो भगवान का वास है, ऐसा ऐसा भी बोल दिया जाता. भगवान नहीं है, भगवान जैसा है. जैसे माता पिता के लिए भी कहा जाता है मेरे पहले भगवान तो माता पिता है, उनको भी हम भगवान का रूप. एक भगवान जैसा, ये दो डिफरेंट चीजें हैं. इंसान भगवान जैसा हो सकता है गुणों में, लेकिन भगवान नहीं हो सकता. क्योंकि भगवान कोई डिग्री नहीं है जिसको हम अचीव करना है. भगवान तो भगवान है, दैट इज वन. आप सबने भी कहा गॉड इज वन. आप देखो टेम्पल में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, सब जगह प्रेयर होती है. बताइए सुनने वाला कोई एक है या कोई अलग अलग है सुनने वाले हमारी प्रेयर को? कहीं भी बैठ के आपने प्रेयर की, सुनता कौन है? बोलिए आप लोग, कौन सुनता है? सुनने वाला तो एक है ना, भले प्रेयर करने वाले डिफरेंट है. प्रेयर करने यहाँ बैठकर करते हैं वो स्थान अलग है, लेकिन सुनने वाला बहुत सारे नहीं, वो एक है. इसलिए आप देखेंगे कुछ भी ऊपर नीचे हो घर गृहस्थ में तो किसको पुकारते हैं? कोई बच्चा ठीक ना निकले, भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो. किसी की बुद्धि ठीक ना हो, इसकी बुद्धि की रिपेयर कर दो। ठीक करना चाहे रिपेयर करना चाहे, नहीं लेनी है, मांगते किससे हैं? उस एक भगवान से। कोई चला जाता है, रसम पगड़ी आदि रसम क्रिया होती है, तो भी किसको कहते हैं भगवान? इसको अपने चरणों में स्थान देना। उस समय कोई भी व्यक्ति को, गुरु को, संत महात्मा को बीच में नहीं लाते हैं। लेकिन आज हम ना समझ होने के कारण जो रिलीजियस फाउंडर है, इनको भी अपनी अपनी भावनाओं से कोई भगवान मान लेता है। जैसे कि ना गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपनी जिन्हें गोविंद दिया मिलाओ। यहाँ गोविंद माना भगवान के लिए कहा गया है। तो ऐसे ही ये सब रिलीजियस फाउंडर्स हैं, धर्म पिता है, परम पिता अलग चीज है। और कई तो नेचर की चीजों को भी भगवान, सूर्य भगवान, गाय को भी भगवान, अग्नि भगवान, वृक्ष, इनकी पूजा कर रहे हैं। अभी भी हमने देखा ना भगवान तू है कहाँ, उसमें किस किस की पूजा कर रहे थे हमने देखा। पूजा करना माना उन्हीं को ही सब कुछ स्वीकार करना। तो ऐसे ही नेचर नेचर है, प्रकृति अपनी जगह है, धर्म पिता अपनी जगह है, लेकिन परम पिता अपनी जगह है। अब परम पिता को हम सब ने स्वीकार किया, गॉड इज लाइट, वो निराकार है। और कई फिर शास्त्र को ही भगवान मानते हैं, और कुछ कहते हैं वर्क इज वर्शिप। जैसे आजकल कर्म योग की ट्रेनिंग हुआ, कर्म योग पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन वो लोग क्या समझते हैं वर्क इज वर्शिप, इस रूप में कर रहे हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट चीज है, काम को भगवान की याद में करना वो कर्म योग है। लेकिन कर्म ही भगवान है या कर्म ही पूजा है ऐसा नहीं, उसकी याद में किया हुआ कर्म पूजा बन जाता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। और कई कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। आप में से कौन कौन मानते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, इतना तो समझ लिया कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज समझ में आ गई है कि आत्मा बच्चा है, परमात्मा पिता है, आत्मा गागर है, परमात्मा सागर है। और बहुत सारे मानते हैं परमात्मा ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है। आप में से कौन कौन मानते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है? अच्छा, थोड़े ही मानते हैं। चलो इस विषय पर भी अपन बात करेंगे। अब परमात्मा कैसा है जब पूछा तो कहते, एक पांच अंधे व्यक्ति थे, सूरदास थे, तो उनको एक हाथी घर में ले जाया गया। सुनिए ना सबने कहानी, जिसके हाथ में सूंड आई उसने क्या कहा, भगवान सांप जैसा है। जिसके हाथ में टांग पैर आया उसने कहा भगवान खंबे जैसा है। जिसके हाथ में पूंछ आई उसने कहा भगवान रस्सी जैसा है। जिसके हाथ में कान आया उसने कहा भगवान पंखे जैसा है। अब वो अपनी जगह ठीक है, उन विचारों को कहा टच करके बताओ, वो तो अंधे थे, उनको जो दिखाई जो टच करने पर मिला तो उसने वैसा कहा। लेकिन वास्तविकता तो हम सब जानते हैं ना कि ये वास्तविकता नहीं है। तो इसलिए अपनी अपनी भावनाओं से हम कुछ बातें कहते हैं। कई बातें भावनात्मक वे में ठीक होती हैं, लेकिन जब यथार्थ में और लॉजिकल वे में देखते हैं तो वो यथार्थ और सत्य नहीं होती है। अब परमात्मा कौन है, ये एक सोचने का विषय बन गया है जो कि हम चर्चा कर रहे हैं। पहली विशेषता होनी चाहिए कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सर्व मान्य जिसको कह सकते हैं। तो सर्व मान्य कौन है, उसके लाइट स्वरूप को विश्व के हर धर्म ने अलग अलग तरीके से परमात्मा को एक लाइट स्वरूप में और एक निराकार को हर धर्म ने स्वीकार किया है। और सेकंड, वो सर्वोच्च है। धर्म पिता हो सकते हैं, महान आत्मा हो सकती है। आत्मा के लिए ये भी कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, लेकिन परमात्मा सुप्रीम वर्ड केवल एक उस निराकार जो प्रकाश है उसके लिए जो सबसे ऊंचा है, सभी धर्म पिताओं से, सभी महात्माओं से, सभी महान आत्माओं से, सभी गुरुओं से जो सबसे ऊंचा है। सारे गुरुओं ने कहा मालक को याद करो, हमने भले उनको भगवान कह दिया हो लेकिन जो मानव चोले में आ गए उन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा, हमने अपनी भावनाओं से कह दिया हो लेकिन उन्होंने इशारा उस एक की तरफ किया, मालिक, अर्जी हमारी मर्जी मालिक की, ऐसे ऐसे भी गुरुजन बोलते हैं और उस एक की तरफ इशारा करते हैं, वो सर्वशक्तिवान है और वो बियॉन्ड ऑल सर्वोपरि सबसे ऊंचा है, जो उसकी महिमा में भी है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, उसका सब कुछ ऊंचा है, वो जन्म मरण से परे है, उसको कोई भी माँ अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती। देवी देवताएं, गुरु संत महात्मा जिनको आज हम भगवान का रूप कहते हो, उसको किसी माँ ने जन्म दिया अपने गर्भ से, माँ तो उनसे ऊंची हो गई ना, चाहे हमारे कोई गुरु भी है उसकी माँ तो उसके लिए ऊंची है ना, उसका शिक्षक तो उसके लिए ऊंचा है ना, जिसने उसको पढ़ाया। तो भगवान सेल्फ मेड है, उसको कोई माँ अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, वो विश्व का रचेता है, उसको किसी ने रचा नहीं है, इसलिए उसको स्वयंभू शंभू स्वयंभू पर आता है और खुदा खुद आता है और आकर के अपना परिचय देता है, उससे ऊपर संसार में कोई दूसरा नहीं, बाकी देवी देवताओं और गुरुओं के ऊपर परमात्मा है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है वो। उसके लिए ये डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है, वो सबको डिग्री देने वाला है, इसीलिए कहा ना भगवान की भगवान बन जाना कोई डिग्री नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती लेकिन परमात्मा के समान बन सकते हैं। लवीश भाई इधर आसपास रहो, अभी चल नहीं रहा, तो इसलिए अभी वो कौन है अभी हम उस तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट कीजिए ना, चल नहीं रहा। हम सबकी बहुत तमन्ना भी रहती है, मैं हमेशा हंसा करती हूँ हमारे बीके परिवार में भी, मैंने कहा मेडिटेशन जिसको हम राजयोग कहते हैं कि ये सबका फेवरेट सब्जेक्ट भी है और ये सबसे टफ सब्जेक्ट भी है, सबका मनपसंद भी है, सब चाहते हैं मेरा बहुत अच्छा सा ध्यान लगे, ये फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे टफ सब्जेक्ट भी है, जल्दी ध्यान लगता नहीं है क्योंकि ध्यान लगाने के लिए भी तो कुछ बातों का ध्यान तो रखना पड़ता है ना, अब मैं किसी को थप्पड़ मारूं, गुस्सा करूं और उठ के ध्यान में बैठ जाऊं तो कैसे ध्यान लगेगा, ध्यान के लिए कुछ मन की स्थिति बहुत अच्छी, मन के अंदर सबके लिए बहुत अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, तो इसलिए ध्यान लगाने के लिए कुछ बातों के ध्यान रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। और ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, फेवरेट भी है, टफ भी है, सबसे स्कोरिंग भी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसका ध्यान लग गया उसको तो सारी प्राप्तियां हो गई, उसकी अवस्था एक रस हो जाएगी, उसका तो फिर इधर उधर कहीं भी मन डामाडोल नहीं होगा। जो आज हमें इंसानों का प्यार खींचता है, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये तो आप समझते हो ना कि भगवान के प्यार के आगे तो इंसान का प्यार फीका पड़ जाता है, तो इसलिए कहा जे बहुत स्कोरिंग भी है, उसको पाने के बाद फिर कुछ और पाने की तमन्ना रहती नहीं है। जैसे एक गीत है हमारा, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। उसको पा लेने के बाद, उससे ध्यान लग जाने के बाद, फिर कुछ और सोचने की और करने की आवश्यकता वास्तव में रहती नहीं है। चलो खैर, ये तो साइंस के साधन है तो ये फेल भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी स्थिति अगर अच्छी है तो ये साइंस के साधन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि साइंस के ऊपर है साइलेंस की शक्ति। भगवान प्यार का सागर है, उसका प्यार सबके लिए बराबर है, लेकिन भगवान जिसको प्यार करता है उसको पहले रगड़ के साफ करता है। भगवान के प्यार में और इंसान के प्यार में मालूम है मुख्य अंतर क्या है? अच्छा आप बताइए, भगवान के प्यार में और इंसान के प्यार में अंतर क्या है? कोई बोलेगा? कंडीशनल और अनकंडीशनल। बहुत अच्छी बात बहन ने बताई, इंसानों से प्यार कंडीशनल हो जाता है और भगवान का प्यार अनकंडीशनल है। इंसानों के प्यार के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम जकड़े हुए ज्यादा हैं, जुड़े हुए कम हैं। ये कंडीशनल प्यार के कारण, ये बहुत गहरी बात कह रही हूं, जकड़े हुए ज्यादा हैं, जुड़े हुए कम हैं। एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा है संबंध के नाते से, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो जुड़ाव अलगाव होने में भी देरी नहीं लगती है। अच्छे अच्छे रिश्तों में जो कि समाज में हम रोज देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि दुनिया में प्यार का मतलब क्या कहते हैं? संबंधों में कोई अच्छे अच्छे गिफ्ट दे, कोई किसी की प्रेज करे, क्रिटिसाइज ना करे, एप्रिशिएट करे, उसकी कमियों को छुपा ले, उसकी केयर करे, ये बातें हम एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं? देह देह के संबंधों के प्यार में ये एक दूसरे से एक्सपेक्ट किया जाता है, इसको हम प्यार मानते हैं। अगर कोई डांट दे या किसी दो के आगे समझा दे तो हम क्या कहते हैं? मैं इतना कुछ किया, ये आपका मेरे से क्या प्यार है? एक छोटी सी गलती हुई, आपने ऐसे करना शुरू कर दिया। मतलब एकदम ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज्यादा आते हैं देह देह के संबंधों में, प्यार में ऑब्जेक्शन, एक्सपेक्टेशंस, बहुत कुछ होता है। लेकिन भगवान अगर हमें प्यार करता है ना, भगवान का प्यार माना, वो हमें हमारा सत्य स्वरूप बताता है, हमारी कमियां बताता है, हमें सुधारने की विधि बताता है, हमें समझाता है, हमें रियलाइज कराता है, हमें फिर अनुभव कराता है। पहले रियलाइज कराता है, फिर जब हम सुधर जाते हैं तो फिर हमें अनुभव भी कराता है, हमारे अंदर शक्ति भरता है, हमें स्ट्रांग बनाता है। ये अंतर है भगवान के प्यार में और इंसान के प्यार में। तो आज का जो सत्र कहो, वह आपका यहाँ पर आना भगवान से और करीबी रिश्ता जोड़ने के लिए है, भगवान से प्यार को बढ़ाने के लिए है, भगवान का अनुभव करने के लिए है। सही ना? जहाँ घूमने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? किस लिए आए हैं यहाँ? भगवान से मिलने आए हैं, भगवान से और नजदीक का रिश्ता जोड़ने आए हैं। इसी लक्ष्य के साथ जो आए तो वो इस कैंपस में ही इतने पावरफुल वाइब्रेशन है कि व्यक्ति को चलते फिरते ही उस ईश्वर का अनुभव होता है। और अभी हम बात कर रहे थे कि हु इज गॉड, जो वो पांच बातें हमने की ना, जो सर्वज्ञ भी हो, जो सर्वोपरि भी हो, सबसे ऊंचा भी हो, जिसको कोई माँ अपने गर्भ में धारण भी नहीं कर सकती हो, तो वो है एक निराकार भगवान शिव, जिसकी शिवलिंग के रूप में आप मंदिरों में पूजा करते हो। वो परमात्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट। हमने कहा ना, गॉड इज लाइट, सोल इज आल्सो पॉइंट ऑफ लाइट। गॉड इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा की अवस्था अप डाउन हो सकती है, परमात्मा एक रस रहता है। आत्मा पाप आत्मा भी हो सकती है, लेकिन परमात्मा हमेशा परमात्मा, परमात्मा पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है। आत्मा अपवित्र आत्मा भी हो जाती है। जब भी हमने कुछ गलत सोचा तो समझो अपवित्र हो गए। आत्मा के जो बेसिक गुण है, सात गुण आपको बेंजी ने कल बताए ना, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, इन सात क्वालिटीज जो देने वाला ईश्वर है, वो सात क्वालिटी जो आत्मा की है, इन नेट क्वालिटीज, वो जब अपने धाम से हमें इस धरती पर भेजता है तो वो फुल करके ही भेजता है। यहाँ बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू होती है। वो सात गुणों को सीरियल वाइज भी याद रखने के लिए और वैसे भी याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है। जैसे नॉलेज का अगला अक्षर है के, प्योरिटी पी, पीस पी, हैप्पीनेस एच, ब्लिस बी और पावर पी। इसको अगर हिंदी में याद रखना हो, किसे पाया पता लगाए, हंसते बजाते पार हो जाए, पहला पहला अक्षर याद रख के। अभी वो चला नहीं ना तुम्हारा, नहीं तो यहाँ पर ठीक से दिखा देती। किसे पाया पता लगाए, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, हंसते बजाते पार हो जाए। इसको थोड़ा मेडिकल भाषा में कहते हैं के पी स्क्वायर, लो हाई ब्लड प्रेशर। तो याद रखने के लिए पहला पहला अक्षर के पी स्क्वायर, लो हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सातों गुण सीरियल वाइज आ जाते हैं। तो ये जो इननेट क्वालिटीज है सोल की, वो देने वाला है सुप्रीम सोल, परमात्मा, हम सब आत्माओं का सच्चा पिता, निराकार भगवान शिव, जिसकी शिवलिंग के रूप में हम पूजा करते हैं, वो एक ज्योति बिंदु है। अब बिंदी की पूजा कैसे करें? तो हमने बड़ी बिंदी बनाई और उसको एक स्टैंड पर रखा। जब उस बड़ी बिंदी को एक स्टैंड पर रखा, उसका नाम रखा शिवलिंग, ताकि एक बिंदी की पूजा नहीं हो सकती तो बड़े रूप से हम उसकी पूजा कर सकते हैं। देखो, आप देखेंगे, अगर अभी आप, मैं पूछूंगी श्री राम के माता पिता का नाम, तो आप क्या बताएंगे? माता कुशल्या, पिता दशरथ। श्री कृष्ण जी के माता पिता पूछूंगी तो भी आप बता सकते हो, देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाला, नंदलाल। लेकिन अब आप बताइए भगवान शिव के माता पिता का नाम, जिसको भी मालूम हो वो जरूर बताए भगवान शिव के माता पिता का नाम क्या है। मालूम है किसी को? नहीं मालूम? मुझे भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि होगा तो बताएंगे, कोई है ही नहीं तो बताएंगे कहां से। इसलिए उसको अजन्मा, अभोगता, अकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। पहले भी हमने बात की ना, कोई माँ उसको अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, वो कर्म के चक्कर में नहीं, ये पाप कर्म पुण्य कर्म इससे परे है। उसकी महिमा तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी आती है, पहली पौड़ी में कि एक ओंकार सत नाम करता पुरुष निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सौभंग, उसको काल नहीं खा सकता, वो जोनियों में नहीं आ सकता, सत्य उसका नाम है, वो करता पुरख है, वो निर्वैर है, उसका किसी से बैर नहीं, वो निर्भय है, उसको किसी का भय नहीं। ये सारी महिमा उस एक निराकार भगवान शिव की ही गाई हुई है। इसलिए हर धर्म जाति के लोगों ने उस एक को स्वीकार किया है। और हम सब कुछ करते हुए भी हमने भजन भी बनाए, नयन ही इनको राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, दो नयन है फिर भी हम कहते हैं हम नयन ही नहीं, हम अंधे हैं, हमें राह दिखाओ। कौन सा नयन नहीं है? ज्ञान का, समझ का और ईश्वरीय प्यार का, वो नयन नहीं है जिसका नाम उनको देख नहीं सकते। अच्छा, जब कुछ प्रॉब्लम में आते हैं, जब दुनिया में कोई धोखा देता है, तो भी हम किसको कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हम भी बदले हैं, हम किसी और की तरफ कह रहे हैं वो बदल गया, लेकिन हम भी तो बदल गए, हम भी समाज का एक हिस्सा है। हमारा बदलाव, हमारा सुधार भी समाज सेवा का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसलिए हमने अपने आप को ठीक करना है तो बाकी सब कुछ ठीक होता ही जाता है। ये भी गायन आता है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान प्रकाश दो भगवान, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ऐसे बहुत सारे गायन आते हैं, तो ऐसा भी एक वर्णन आता है जो मैंने कहा ना, भगवान स्वयं धरा पर आता है। तो कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण जी तैयार हो रहे थे, शीशे के आगे खड़े थे, अच्छी तरह तैयार हो रहे थे, तो उनका सारथी जो उनको ले जाने के लिए था, वो देखता है कि श्री कृष्ण जी बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब वो देरी नहीं लगाते तैयार होने में, आज क्या बात आए क्यों नहीं। वो अंदर जाके देखता है तो जाके कहता आज आपको क्या हो गया, आप तो फटाफट आ जाते, आज आप कैसे सजने धजने में लगे हुए हो। कहता आज मैं दुर्योधन से मिलने जाना है, ध्यान से सुनना, कहते आज मैं दुर्योधन से मिलने जाना है। कहते वो तो ठीक है, दुर्योधन से मिलना है तो इतना मेकअप करने की, इतना रेडी होने की और इतना सारा स्टाइल बनाने की, तो ये इतना सारा तैयार होने की, इतने सुंदर सुंदर गहने कपड़े ये सब पहनने की क्या आवश्यकता है। कहते दुर्योधन ना मेरे उस स्वरूप को पहचानता नहीं है, इसलिए मैं ये सजधज रहा, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो साधारण स्वरूप है, उसको वो पहचान नहीं पाता है। और फिर उसने प्रश्न किया उनके सारथी ने, वो कहता है चलो ये बात भी ठीक है आपकी, मान ली, लेकिन अब आप इतनी बड़ी हस्ती, दुर्योधन आपके आगे क्या है, वो आपको मिलने के लिए खुद आए, आप क्यों उसको मिलने जा रहे हो। तो श्री कृष्ण ने कहा अंधेरा प्रकाश के पास नहीं आ सकता है, प्रकाश ही अंधेरे के पास जाता है। तो ये किसकी कहानी है, किसकी कहानी है? ये हमारी कहानी, वो परम प्रकाश और हम अंधेरे में इंसान, वो खुद आता है आकर के, खुदा खुद आ, वो खुद आता है और हमें ढूंढता है, अपना बनाता है। आप यहाँ अपनी मर्जी से थोड़ी पहुंचे हैं, आपको भगवान ने बुलाया है। ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन आता है, मैं ना जप से, ना तप से, ना दान से, ना पुण्य से मिलता हूँ, मुझे मिलने की विधि मैं स्वयं आके बताता हूँ। इसलिए वो आता है प्रकाश, हमारे आकर के अंधेरे को खत्म करता है। और जैसे माँ बच्चे की संभाल करती है ना परमात्मा, वैसे तो हम वैसे भी कहते हैं वो हमारा मात पिता बंधु सखा साधन सब कुछ है, कितने सारे गीत बने हुए हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साधन, तुम ही हो सब कुछ। वो परमात्मा साजन, आत्मा सजनी, इसलिए आप देखेंगे जब आत्मा की बात होती है ना, कि मेरी आत्मा नहीं मानती, भाई भी ये नहीं कहता मेरा आत्मा नहीं मानता, भाई भी ये बोलेगा मेरी आत्मा नहीं मानती, और परमात्मा को पुरुष के रूप में लिया जाता है। परमात्मा को जब पुकारते हैं, भगवान कहता है या कहते हैं, भगवान कहती है नहीं कहते, यानी वो पुरुष आत्मा स्त्री, ऐसा भी वो साजन वो सजनी इस रूप में भी इसको लिया जाता है। जैसे वो मीरा जी की कहानी आती है ना, कि एक बार वो वृंदावन में किसी संत से मिलने गए, तो जो गेट कीपर खड़े थे तो उन्होंने कहा कि गुरुजी औरतों को मिलते नहीं है, स्त्रियों को मिलते नहीं है। तो खड़ी हो गई, कहती मैं उस व्यक्ति को मिलना चाहती हूँ जो अपने आप को पुरुष समझता है। पुरुष तो एक ही है सृष्टि पर, परम पुरुष परमात्मा, दूसरा पुरुष कौन सा आ गया यहाँ पर जो कहता है मैं स्त्रियों से मिलता नहीं हूँ। तो सुनने वाले को भी थोड़ी सी डिफरेंट बात लगी, तो वो जाकर के बताता है कि एक स्त्री आपसे मिलने आई है। कहते कैसी है, वो बताता है उसका ऐसा ऐसा ड्रेसअप है और वो स्त्री आई है, और जब मैंने कहा कि हमारे गुरु जी स्त्रियों से नहीं मिलते हैं तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया, तो मैं आपको बताने आया हूँ। तो ये उत्तर सुनकर के गुरु की भी आंखें खुल गई, वो गुरु जी उठ करके आए मीरा को मिलने, और मीरा को चरण स्पर्श करके कहते मीरा भाई आपने आज मेरी आंखें खोल दी, हम तो पुरुष यूं ही समझ रहे थे, मेल ईगो में चल रहे थे कि हम पुरुष हैं, लेकिन पुरुष तो एक परमात्मा है, सारी आत्मा रूपी स्त्रियां सजनियां बच्चियां। इसलिए परमात्मा, परमात्मा कहते परम आत्मा, यानी वो परम जो है परमेश्वर, वो आत्मा की माँ है, एक परमात्मा का ये भी मीनिंग है। बाकी तो सारे संबंध उसके हमारे साथ है, जिसकी शिवलिंग के रूप में हम पूजा भी करते हैं, मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा की। और 12 ज्योतिर्लिंगम तो बहुत प्रोमिनेंट है शिव की पूजा के, वैसे तो छोटे छोटे और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट डाल दो, दिखा देंगे, वैसे तो काफी कुछ बात हो गई है। अच्छा ठीक, तो ये आप सामने उस परम पिता का स्वरूप देख रहे हैं, ये परमात्मा का रियल स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट आप सामने देख रहे हैं, कैसे उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है उस परम पिता परमात्मा का। तो हमने बात की मीरा की कि ऐसे ही कई बार क्या होता है, शिष्य भी गुरुओं की आंख खोल देते हैं। ये निशानी है भगवान की और इंसान की, एक गुरु है, हम लोग हैं, एक इंसान चोले में है व्यक्ति, तो वो अपूरन है। भले हम एक श्रद्धा से कहते हैं पूरन गुरु, लेकिन भगवान ने कहा संपूरन एक परम पिता परमात्मा, जब तक आप इस धरा पर हैं आप अपूरन हैं, कुछ ना कुछ हमें शारीरिक व्याधि आना भी तो हमारी अपूरनता की निशानी है ना, कोई कर्म का हिसाब किताब हल्का फुल्का पेंडिंग होता है, वो सिर दर्द के रूप में, बुखार के रूप में, बीमारी के रूप में, किसी अन्य बीमारी के रूप में आता है, तो ये एक भले उसको अपन 99.98% कह सकते हैं, लेकिन 1% 0.001% की कमी तो जब तक हम तन के अंदर हैं वो है। भगवान कहता है उस दिन फिर ये तन ही नहीं रहता, संपूर्ण व्यक्ति फिर पहुंच जाता है। जो परमात्मा आत्मा माँ है वो हमें ये सब बातें बताती है। हम बात कर रहे थे ना कि शिवलिंग की जगह जगह जो पूजा होती है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में, कहीं भी दसों दिशाओं में सारी जगह उसके शिवलिंग है। अगर आप देखेंगे ईस्ट की ओर जैसे काशी विश्वनाथ हो गया, वेस्ट की ओर सोमनाथ हो गया, नॉर्थ की ओर अमरनाथ हो गया, और साउथ की ओर रामेश्वरम हो गया, ऐसे अनेकानेक जो शिवलिंग है वो उस परम पिता परमात्मा शिव के रूप में जाने जाते हैं। आप देखेंगे कुछ देवी देवताओं के या कुछ गुरुओं की मान्यता किसी एक विशेष एरिया में, या धर्म की मान्यता किसी विशेष एरिया में होती है। जैसे देवताओं का भी देखेंगे ना किसी एरिया में गणेश जी की ज्यादा पूजा होती है, किसी एरिया में किसी और देवता की पूजा होती है, लेकिन आप देखेंगे शिवलिंग की पूजा सब जगह होती है। मंदिर चाहे हनुमान का हो, मंदिर चाहे श्री कृष्ण का हो, मंदिर चाहे लक्ष्मी नारायण का हो, वहां शिवलिंग जरूर बना होता है। जो सिद्ध करता है उस निराकार भगवान को, जो मैं बता रही थी ना वो पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट को एक बड़ा ज्योति लेकर के एक स्टैंड के ऊपर रखा, जिसको नाम दिया हमने शिवलिंग। वो निराकार भगवान शिव, जो शांति के सागर, अनंत के सागर, प्रेम के सागर है, उनका गायन है। गीता के अंदर वर्णन आता है, मन मना भव, जनी मन मुझे दे दो व मन मेरे में लगा दो तो तुम्हें सर्व प्राप्तियां होंगी। तन मना भव, धन मना भव नहीं कहा जाता है, मन मना भव। मन जब उसके स्पुर्द हो जाता है, फिर से मन अपनी मर्जी से कुछ सोच भी नहीं सकता है, जुड़ना जरूरी होता है। कोई भी शक्ति जब किसी भी अपने सोर्स से जुड़ती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे धरती सूर्य के पास चक्कर लगाती है तो सूर्य की शक्ति उसमें आती है, नदी सागर में मिलती है तो सागर की शक्ति उसमें आ जाती है, और सूर्य की लाइट से जब हम कनेक्ट होते हैं तो भी पेड़ पौधों की, इंसान की, सबकी ग्रोथ भी होती है ना, तो ग्रोथ भी उसके बिना संभव नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान सूर्य परमात्मा है हम सबका, उसके साथ हमारा जुड़ना जरूरी है। देखो पेड़ पौधे भी जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी ईगो, हमारे डाउट्स, हमारे ईगो और डॉट्स की जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट परमात्मा हमें ऊपर की ओर पुल करता है, फिर हमारे ये ईगो डाउट्स ये सब नीचे रह जाते हैं। लेकिन उस ज्ञान सूर्य परमात्मा से जुड़ कर के ही हम उसकी शक्तियां ले सकते हैं, हम स्ट्रांग हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति संसार में ऐसे भी होते हैं जो भगवान को जैसे कि मानते नहीं है, एक तरह से ये समझते हैं कि नास्तिक टाइप, ऐसे ही कहते। एक बार एक नास्तिक को टॉपिक दिया गया कि अच्छा आप जी सिद्ध करके बताओ कि भगवान नहीं। उसने अपने बहुत सारे दलील दिए कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं है, इसके लिए उसने बहुत सारे प्रमाण दिए, और लास्ट में कहता है थैंक गॉड आई हैव प्रूव्ड देयर इज नो गॉड। मैं बहुत पहले 84 से 98 तक बैंक जॉब की, तो मेरे जो बॉस थे चीफ मैनेजर, वो तर्कशील सोसाइटी के हेड थे। तो जी तर्कशील सोसाइटी वाले भी यही कहते हैं कि देयर इज नो गॉड। तो एक बार वो बहुत बीमार हो गए, मैं उनका हालचाल पूछने गई। मेरे को वैसे आगे पीछे कहते रहते थे ना, जैसे छोटे थे उस समय, समझो 84 में मैंने तो मात्र 19-20 ईयर की एज में बैंक ज्वाइन कर लिया था, तो उनके आगे तो मैं छोटी थी, तो समझाते रहते थे इन चीजों में कुछ नहीं रखा ऐसे करके। तो जब मैं हालचाल पूछने लगी तो उसकी पत्नी भी बैठी थी, वो भी लेटे हुए थे, तो मेरे को कहते बिंदु जी आप ही कोई भगवान से प्रार्थना करो मैं ठीक हो जाऊं। मैं क्या अब कहां से आ गया भगवान। मतलब हमारे भले हम इधर उधर से किताबें पढ़ के या हमारी कुछ ऐसी गलत आदतों के कारण हम उस ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाते ना, तो हम ये समझने लग जाते हैं कि ईश्वर है ही नहीं है। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बातें, ऐसा समय मानव के जीवन में आता है जो उसको एहसास कराता है कि भगवान को ना मानने के कारण और उसका विरोध करने के कारण भी कहीं ना कहीं कुछ है। तो उन्होंने ये महसूस किया कि मैंने लंबे टाइम तक भगवान का विरोध किया, शायद आज मैं उस चीज का भुगतान कर रहा। तो हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में, भले हम कुछ करें या ना करें, सबकॉन्शियस माइंड में ये जरूर है कि भगवान है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और जिस पर हम सबको भी ध्यान देने की वास्तव में आवश्यकता है। देखो, आत्मा और परमात्मा की हम बात कर रहे थे तो हम, समय हो रहा है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ये सिमिलैरिटीज है आत्मा और परमात्मा में, वो भी इटर्नल है, वो भी इटर्नल है, वो भी कॉन्शियंट है, इनकार्पोरियल है, पॉइंट ऑफ लाइट है, सेल्फ ल्यूमियस है। ये है इनकी सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि आत्मा परमात्मा नहीं है, ये बात अच्छी तरह, आत्मा बच्चा है, परमात्मा पिता है। जब कोई मरता भी है तो हम क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास गई, परमात्मा की गोद में समा गए। तो इसका मतलब आत्मा नीचे थी, परमात्मा ऊपर था, अब आत्मा परमात्मा के पास गई है। तो इसलिए हम सबके अंदर आत्मा है, ना कि हम सबके अंदर परमात्मा है। ये हमें अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अगर हम सबके अंदर परमात्मा होता, चलो हम किसी कमरे में अगरबत्ती जला दें, अगरबत्ती ना भी दिखाई दे लेकिन उसकी खुशबू तो फैलेगी या नहीं कमरे में। तो परमात्मा अंदर हो, परमात्मा के गुणों की, उसके प्यार की थोड़ी बहुत खुशबू तो मानव में नजर आए। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने मेरे से बहस करने लगे कि परमात्मा सबके अंदर है और सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख भगवान देता है, सब कुछ परमात्मा ही करता और कराता है। तो उनकी बच्ची को उनके ससुराल वालों ने जला दिया था, वो इकट्ठे होके जा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आपके दामाद को भगवान ने हुक्म किया, आपने कहा हुक्म के बिना कुछ नहीं होता, आपके दामाद को भगवान ने हुक्म किया आपकी बेटी को जलाने के लिए, तो फिर भगवान के हुक्म की पालना करने की सजा देने जा रहे हो आप, क्या करने जा रहे हो? आप मानते हो कि ये भगवान के हुक्म से हुआ, किसी बच्ची की इज्जत लूटी गई, ये भगवान ने हुक्म किया वो मेरी बच्ची जा रही है उसकी इज्जत लूट लो या उसका कत्ल कर दो? तो आज तो जो कुछ हो रहा है भगवान के हुक्म के बिना ही हो रहा है, गलत हुक्म तो भगवान कर नहीं सकता, दुख कभी वो दे नहीं सकता। तो इसलिए भगवान अपने महावाक्यों में कहते हैं कि आज तुम लोगों को दुख कष्ट क्यों आए, क्योंकि तुमने इंसानों पर तो एलिगेशन लगाए, तुमने भगवान को भी नहीं बख्शा, उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा दिए कि सब कुछ तू ही करता है। अगर मेरी फैक्ट्री कामयाब हो गई फिर तो मेरी मेहनत, अगर फैक्ट्री फेल हो गई तो भगवान की यही मर्जी थी, हम तो इतने ओवर स्मार्ट हो गए, अच्छा हो गया तो मेरी मेहनत, बुरा हो गया तो भगवान ने कराया। बताओ इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इसलिए ये भूल कर भी नहीं कहना सब कुछ परमात्मा करवाता है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है भगवान के ऊपर। इसलिए ये एक बहुत गहरे सब्जेक्ट है, कोई एक घंटे में सब्जेक्ट पूरा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ये अच्छी तरह समझना है भगवान क्या करता है क्या नहीं करता है। तो इसलिए इस चीज को समझ करके जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमें ज्यादा अच्छा अनुभव होता है। अब डिफरेंस क्या है, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग है, हम सबके अंदर परमात्मा नहीं है, हम सबके अंदर आत्मा है, हमें शरीर है, भगवान शरीर के बिना है। हम गर्भ में प्रवेश करती है, आत्मा गर्भ में जाती है लेकिन परमात्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करते। एक माँ के गर्भ में बच्चे का शरीर तैयार होता है, लगभग आधे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, फिर वो कुछ मंथ के बाद बाहर निकलती है शरीर सहित। इसलिए उसको ह्यूमन बींग, ह्यूमन बॉडी इज यूज फॉर बॉडी एंड बींग फॉर सोल, बॉडी प्लस सोल दोनों कंबाइन होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। हम अनुभव करते हैं, अच्छा बुरा फील करते हैं, परमात्मा इन सब चीजों से परे है और वो जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आते हैं। ये हम सबने कर लिया है। परमात्मा की महिमा क्या क्या है? परमात्मा के रहने का स्थान सबसे ऊपर सोल वर्ल्ड जिसको लिखा है, जो गॉड वर्ल्ड भी है, जहाँ आत्माएं रहती हैं और वो परमात्मा पिता रहता है। आत्मा रूप में ज्योति बिंदु जो छोटे छोटे सितारे दिखाए हैं, और नीचे है बीच में फरिश्ता लोक देवलोक, और नीचे है फिजिकल वर्ल्ड, उसको सटल वर्ल्ड माना, आकारी लोक देवलोक, इसका एक अलग से विस्तार है। फिर वो अपने अपने सेंटरों पे आप जाकर के सुनेंगे। ये फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसको साकार लोक कारपोरियल वर्ल्ड भी कह देते हैं। इसमें ये पांचों तत्व भी हैं, और यहाँ पर हम कर्म करते हैं, सुख दुख भोगते हैं, ये सारा इस साकार लोक पर होता है। और ये है वो निराकारी दुनिया। उस निराकारी लोक को परम धाम भी कहते हैं, क्योंकि परम पिता रहते हैं। वो शांति धाम भी है, क्योंकि वहाँ शांति ही शांति है। सोल वर्ल्ड है, क्योंकि परमात्मा पिता के साथ हम आत्मा रूप में रहते हैं। जैसे कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको जाना है। कहाँ जाना है? जो हमारा असली घर है उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि इस देह के बंधन को छोड़ करके हम वहाँ जाते हैं। और उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा निर्वाण की अवस्था में रहती है। वहीं से हम इस धरा पर ऊपर से आत्मा नीचे आती है, जब पाठ पूरा होता है तो वापिस वहां जाती है। हमारा इस धरती पर आने का पर्पज क्या है? हम अपना फुल पोटेंशियल दें और फिर उस परमपिता परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं, उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा पर चल करके। जो शुरू में हमने बात की भगवान का रोल क्या है, क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा किसी फैक्ट्री का मालिक होता है तो वो अपने आप तो सारे काम नहीं करता ना, वो करवाता है। तो परमात्मा भी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को सृष्टि का रचेता कहते, विष्णु को पालनहार ऑपरेटर, और डीफा डिस्ट्रक्टर शंकर जी को कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और विनाश हो गया। बुराइयों के नाश की बात है, बुराइयों की डिस्ट्रक्शन की बात है। अब परम पिता परमात्मा इस समय इस धरा पर आकर के ये पांच विकार जो हमारे हैं, एंगर ग्रीड लस्ट अटैचमेंट ईगो, इनसे हमें दूर करते हैं। इनसे दूर करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए और शक्ति बढ़ने के लिए भगवान हमारे पास आते हैं। तो इसलिए जब जे हमें सारा ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान और योग मेडिटेशन, एक हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, सारा समझ मिल गए, नॉलेज इज माइट लाइट एंड मेडिटेशन इज माइट। नॉलेज से लाइट मिलती है, प्रकाश, ज्ञान प्रकाश मिलता है, और मेडिटेशन से शक्ति मिलती है। जब नॉलेज और मेडिटेशन में दोनों चीजें हो जाए जीवन में, तो ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाती है, हमारा बदलाव भी सहज हो जाता है। तो उस परम पिता परमात्मा को सबने उसकी तरफ इशारा किया है, ये सारे संबंध हमने डिस्कस कर लिए हैं उनके साथ। अभी लास्ट में आप सब मेडिटेशन में अभी बैठेंगे, तो ये आप सबको भगवान को एक पत्र लिखना है। और जो आपका फेवरेट रिलेशन है, जो आपको सबसे प्रिय रिलेशन है ना, वो रिलेशन आप जैसे मेजोरिटी ने माँ कहा, जैसे मैंने देखा ना पांच सात ने बताया, तो सबसे पहला नंबर माँ को दिया। तो या और भी किसी को जिसने कुछ अलग बताया, तो जो आपका सबसे प्रिय रिलेशन है वो भगवान से जोड़ दो, क्योंकि इंसान का रिलेशन तो कभी छूट सकता है। भगवान से जो रिलेशन जोड़ लिया वो अनादि अविनाशी हो जाता है, और उसके साथ अपनी उस संबंध जोड़ के फिर उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो। फीलिंग्स में आपने क्या क्या करना है वो चार बातें हैं। पहले तो अपना प्रिय रिलेशन सोच लीजिए, जिस संबंध आपने शिव परमात्मा शिव बाबा से जोड़ना है, और फिर वो संबंध जोड़ के उनके साथ क्या फीलिंग शेयर करनी है। रॉन्ग एक्शंस परफॉर्म बाय अस फॉर विच वी हैव गिल्ट इन अवर माइंड सीक फॉरगिवनेस। कोई ऐसा, हम इंसान हैं, आपको जीवन काल में लगे कि ये मेरे से कुछ गलत हुआ था, तो आज भगवान से उसके लिए माफी मांग ले। और दूसरी बात, कोई प्रॉब्लम आप इस समय फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो प्रॉब्लम शेयर करें कि ये प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, उसको दूर करने के लिए भी भगवान से उसको शेयर करें। और कोई कमजोरी है पर्सनल, कई बार परिवार भी ध्यान खिंचवाता है, खुद को भी पता होता है, तो अपनी उस कमजोरी पर आप जीत पहन सके, उसकी शक्ति उससे मिलेगी जब आप शेयर करेंगे कि ये कमजोरी है मुझे भरनी है, ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है, और ये मेरी गलती है जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और फिर बहुत कुछ हमें उस भगवान की ओर से मिला हुआ भी है, तो जो मिला हुआ है उसके लिए उसका थैंक्स भी जरूर करना है। ये चार बातें सबको याद हो गई, की हुई गलती के लिए माफी, और कोई प्रॉब्लम है जीवन में तो उसके लिए मार्गदर्शना और शक्ति और सुधार, और तीसरा कोई वीकनेस भरने के लिए, और चौथा जो कुछ आपको प्राप्त है ईश्वर से उसे शक्ति मांगना। अभी गीत चलेगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, ये गीत चलाना है। पहले मैंने कुछ और बोला था, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। आप उसके नाम से लेटर लिखेंगे, और चाहे तो वो आप यहाँ कोई भी भंडारी पड़ी होगी तो कहीं भी किसी भंडारी में, या बाबा के लिए पत्थर, बाबा के कमरे में एक भंडारी है बाबा के लिए पत्थर, तो उसमें भी आप वो लेटर डाल सकते हैं। अभी 5 मिनट ये गीत चलेगा प्रभु प्यार का, और उसको ये सौंपना और ये सब बातें लिखनी, और सामने ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा से ध्यान करके उस बिंदु पर मन एकाग्र करके 1 मिनट के लिए, और फील करके उसको सामने तुझे बात उससे करिए मन की, और पत्थर में लिखिए। जिनके पास कागज पेन है तो वो जरूर लिखें, और जिनके पास नहीं है वो जो आपको कमरे में मिली है पैड, वो पर जा करके लिखना जरूर है सभी को, जिनके पास है वो अभी लिख लें। अभी आप सबने जो भी पत्र लिखा है तो शिव परमात्मा आपको बहुत सारी शक्ति भी देंगे आपकी इन सब समस्याओं के समाधान के लिए। तो आप सब कहीं भी बाबा के कमरे में किसी भी भंडारी में डाल सकते हैं अपने इस पत्थर को, विदाउट नेम, नेम लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस आपकी भावनाएं भगवान के पास पहुंच जाती हैं। ओम शांति।